समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में रोजाना हम आपको देते हैं देश और दुनिया के ताजा समाचार और इसके साथ मौसम की जानकारी भी। इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं और कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और आज मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनिता आनंद। नमस्कार अनिता।
नमस्कार फरहत। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी गोल्ड On 100.1 megahertz and the Akashvani network, we bring you our ever-exciting Delhi News Magazine program, Aaj Savere, wherein over the next half an hour, we shall bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as, like Farhat mentioned, some historical information related to this day, that is 5th of October. So let's begin with the headlines first, Farhat.
जी अनीता, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हरियाणा चुनाव से जुड़ी खबर से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 90 सदस्य विधानसभा चुनाव में 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 930 पुरुष और 101 महिलाएं शामिल हैं। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि इनमें 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। राज्य में 2,03,54,000 से अधिक मतदाता हैं। चुनाव के सुचारू संचालन के लिए कुल 20,632 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट करने की अपील की है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी ऑन अ डे लॉन्ग विजिट टू महाराष्ट्र टुडे। ड्यूरिंग हिज विजिट द प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च वेरियस इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर वर्थ अराउंड 23,300 करोड़ रुपीज इन वाशिम। He will also inaugurate the Banjara Virasat Museum, celebrating the rich heritage of Banjara community. Later, Mr. Modi will inaugurate and lay the foundation stone for various development projects worth over 32,800 crore rupees at Thane. In Vashim district, the Prime Minister will release the 18th installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme. During this event, over 9.4 crore farmers across the country will receive direct financial benefits amounting to more than 20,000 crore rupees. On the occasion, he will also release the additional benefit of around 2,000 crore rupees to the farmers of Maharashtra under the 5th installment of the Namo Shetkari Mahasamman Nidhi Yojana.
जी अनिता, और इसके अलावा प्रधानमंत्री पशुओं के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप का भी शुभारंभ करेंगे। वे मुख्यमंत्री और सौर कृषि वाहनी योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र में 19 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 5 सौर ऊर्जा पार्क राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी मुख्यमंत्री माझी लाडकी वाहिनी योजना की लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। श्री मोदी ठाणे में प्रमुख मेट्रो और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री ठाणे में छेड़ा नगर से आनंद नगर तक लगभग 310 करोड़ रुपए की लागत वाले एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे एक्सटेंशन का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी लगभग 2,550 करोड़ रुपए की नवी मुंबई हवाई अड्डा अधिसूचित क्षेत्र परियोजना नैना के पहले चरण की आधारशिला भी रखेंगे।
इंडिया इज रिन्यूड इट्स अर्जेंट कॉल फॉर अडॉप्टिंग एन इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट टेररिज्म, द वन ऑफ इट्स फर्स्ट प्रपोज्ड नियरली 30 ईयर्स अगो। Addressing the UN General Assembly's legal committee on Thursday, R. Metley, a legal officer with India's UN mission, expressed deep concern over the growing strength of terrorist groups which are now harnessing cutting-edge technologies like drones to enhance their capabilities. She expressed the need for countries to overcome the current stalemate in finalizing the Comprehensive Convention on International Terrorism. Ms. Metley condemned the countries that justify terrorism for political reasons, which has previously defended certain groups as freedom fighters. She urged the international community to move past these divisions, warning that the global fight against terrorism is being weakened by such political agendas. India's appeal for international unity comes in the wake of renewed global commitments to counter terrorism following the adoption of Pact of the Future at the last month's UN summit.
वहीं भारतीय वायुसेना कल से 8 अक्टूबर तक चेन्नई में अपना 52वां स्थापना दिवस मनाएगी। मुख्य समारोह 8 अक्टूबर को होगा। समारोह में ताम्बरम वायुसेना स्टेशन पर फ्लाईपास्ट और परेड होगी। उन्होंने कहा कि इस एयर शो को देखने के लिए 10 से 12 लाख दर्शकों के आने की उम्मीद है। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा है कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए वायुसेना अपने उपकरणों और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के लिए स्वदेशीकरण पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा वायुसेना का लक्ष्य 2047 तक सभी आवश्यक साजो सामान भारत में विकसित और उत्पादित करना है। मुद्रा भंडार में तेज वृद्धि ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने की भारत की क्षमताओं को मजबूत किया है और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी देखने को पहुंच मिली है।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विल ट्रेवल टू इस्लामाबाद टू अटेंड द Shanghai Cooperation Organization SEO Summit on 15th and 16th of this month. External Affairs Ministry's spokesperson Randeep Jaiswal confirmed this during a media briefing in Delhi yesterday. On Zakir Naik's visit to Pakistan, Mr. Jaiswal said, India is not surprised that a fugitive from Indian justice has received a high-level welcome in Pakistan. He termed it as disappointing and contemptible.
देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया है। 27 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में यह भंडार 704.89 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष मध्य जुलाई से इसमें 12.59 अरब डॉलर की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस उपलब्धि के साथ ही भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड जैसी तीन अन्य अर्थव्यवस्थाओं के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है।
Academicians and researchers across the country have hailed the Union Cabinet's recent decision of conferring of the status of classical language to 5 Indian languages. The Cabinet on Thursday included Assamese, Bengali, Marathi, Pali and Prakrit in the list of classical languages. This status will help the languages receive several benefits from the government in promoting their study and preservation. Talking to Akashwani News, Calcutta University's Buddhist Studies Department's Professor Dr. Ujjwal Kumar said these languages have cultural heritage and this decision will help in the promotion of the languages. He added that it will generate more employment opportunities for literature students.
मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू कल से 10 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। यात्रा के दौरान डॉक्टर मोइजू द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। माले में राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि भारत के साथ संबंध मालदीव के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मालदीव के राष्ट्रपति मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे।
In tennis, the Indo-Croatian duo of Rohan Bopanna and Ivan Dodik have advanced to the second round of men's doubles at the Shanghai Masters. The duo secured a comfortable 6-4, 6-3 victory over the Spanish pair of Pedro Martinez and Pablo Carreño Busta yesterday in the first round. After being eliminated in the opening round at the China Open last week, the fifth-seeded pair raced to victory in just 1 hour and 3 minutes, marking their first win as partners this year.
और अनीता, टेनिस के बाद क्रिकेट की बात कर लेते हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रनों से हरा दिया। दुबई में कल शाम खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 160 रन बनाए। 161 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत की टीम 102 रन ही बना सकी। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से रोजमेरी मेयर ने 4 विकेट लिए। सोफी डिवाइन ने 36 गेंदों पर नाबाद 57 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से रेणुका सिंह ने 2 विकेट लिए। और राष्ट्रीय समाचारों के बाद अब रुख कर लेते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरों का।
IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम टू क्रिएट साइबर कमांडोज अमंग लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री। द स्पेशलाइज्ड फोर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ डिफेंडिंग द कंट्री अगेंस्ट साइबर अटैक्स, safeguarding sensitive data and maintaining digital sovereignty. From financial fraud and data breaches to critical infrastructure attacks, the digital landscape poses significant risks. This program aims to equip law enforcement officers with advanced skills to combat cyber challenges. IITM Director Kamakoti said that the course will have advanced modules on system forensics, detection and prevention of unethical access to systems and detecting cyber crimes, among others. Existing cyber crime cells primarily focus on reactive measures that include investigation and prosecution of cyber crimes. State Health Minister M. Subramanian ordered action against two doctors who were found absent without authorization while he conducted a surprise inspection in a government hospital in Sulur on the outskirts of Coimbatore yesterday. The minister checked staff attendance and spoke to patients about the quality of treatment and also inquired about the total strength of doctors in the hospital. The senior doctor informed that out of the total number of six doctors, two of them were absent without authorization for the past 10 months. The minister then asked the doctors as to how they were covering the duties. Joint Director Health assured that an inquiry would be conducted in the issue. ISRO's Gaganyaan human space flight missions group captain Angad Pratap has said that anyone who loves science can become an astronaut. He was delivering an online talk on who can become an astronaut, organized by ISRO as part of the World Space Week celebration. Mr. Pratap said astronauts basically must commit their life to the cause of science. The other reasons, like getting famous or hiking a space ride or seeing Earth from space, are not worthwhile. He pointed out that the core qualities to become an astronaut are honesty and integrity, stress, endurance, teamwork, cognitive skills, knowledge sets, skilled execution, real-time decision-making, and the physical fitness and sharp mind. The Telangana state government has accorded administrative sanction of 826 crore rupees to improve traffic movement at six major junctions surrounding the Kasubrahmanand Reddy Park. The project covers all major junctions around the park, which is located at the center of Hyderabad. The works will be taken up via an engineering procurement contract and will be executed as a part of Hyderabad City innovative and transformative infrastructure. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Farhat.
जी अनिता, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री आतिशी कल नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों को डिग्री देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने छात्रों और प्रोफेसरों को मौलिक और बुनियादी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया, जिससे राष्ट्र और लोगों की प्रगति के लिए नवाचार और आविष्कार विकसित होते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को विनम्रता का गुण जरूर सीखना चाहिए, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि देश के युवाओं को नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। उन्होंने कहा कि जब विश्वविद्यालय से छात्र उद्यमी बनकर निकलेंगे तो भारत विकास की दृष्टि से दुनिया में सबसे आगे होगा। वहीं दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि राजधानी के रोहिणी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के कारण कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार रोहिणी सेक्टर 19, सेक्टर 18, बादली और इससे सटे इलाकों में सोमवार को दिन में 10 बजे मरम्मत कार्य शुरू होगा, जो लगभग 20 घंटे तक चल सकता है। इस दौरान जलापूर्ति बाधित रहेगी। विभाग ने लोगों से जल भरकर रखने और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC का दो दिवसीय दान उत्सव कल समाप्त हो गया, जिसका उद्देश्य दान या सेवा के कार्यों के माध्यम से समाज में अपना योगदान देना है। दो दिवसीय उत्सव में 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया और इस दौरान मेट्रो सवारी, कठपुतली खेल और नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया। और अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने कल वाटाड़ झाड़गांव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम रत्नागिरी में 29,550 करोड़ रुपए के निवेश वाली दो परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे 38,120 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित निवेश परियोजनाओं में सिलिकॉन वेफर्स, ATMP, फैब, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र भी शामिल हैं। एक परियोजना राज्य के वाटाड़ और झाड़गांव MIDC क्षेत्रों में आएगी। इस परियोजना में कुल 19,550 करोड़ का निवेश होगा और 33,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा है कि रेल का किसी भी हालात में निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की यात्रा का साधन है, इसीलिए सरकार ने इस क्षेत्र में भारी निवेश किया है। ये निवेश अनुसंधान, सुरक्षा और मानव संसाधन पर भी केंद्रित है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल रेल के निजीकरण के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। श्री वैष्णव ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के 40वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए नाशिक में कहा कि बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 35 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बल में महिला जवानों की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं मुंबई ने कल मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने का जश्न मनाया। शहर में 100 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुंबई के शिवाजी पार्क और प्रभादेवी इलाके में बच्चों को पटाखे बांटे गए। ढोल नगाड़ों की रस्म से मोहल्लों में मंगलमय माहौल बन गया। कोहली ब्रदर्स ने पश्चिमी उपनगरीय मुंबई के मलाड इलाके में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। दहेसर, विल्ले पार्ले, मुलुंड, भाईखला, सेवरी सहित अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधायक आशीष शेला ने बांद्रा पश्चिम में कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा के विभिन्न पदाधिकारियों ने मराठी भाषा के लिए काम करने वाले लेखक और कलाकार से मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। विधायक आशीष शेला ने महाराष्ट्र भूषण आशा भोसले से भी मुलाकात की। और अब पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कल शाम अपनी हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे भूख हड़ताल भी करेंगे। डॉक्टरों ने शाम 8:30 बजे तक का समय दिया है। इससे पहले कल उन्होंने एक रैली भी निकाली। डॉक्टरों ने 1 अक्टूबर से दोबारा काम बंद करना शुरू कर दिया था। महानगरों की खबरों के बाद अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। अनीता, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मौसम की। तो आज बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई की बात करें तो वहां पर भी बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव थंडरस्टॉर्म विद रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with the possibility of rain or thunder showers accompanied with squall. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
और देश और दुनिया के इतिहास में 5 अक्टूबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है अनीता, तो इतिहास के पन्नों को ही पलट लेते हैं। 1676 की बात की जाए तो ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दो तरह के सिक्के ढालने की इजाजत दी। मुंबई में ढाली गई ये मुद्रा रुपया और पैसा कहलाई गई।
एंड इन द ईयर 1878 द फर्स्ट इंडियन सर्कस वॉज प्लेड बाय विष्णु मोरेश्वर छात्रे ऑफ सांगली इन मुंबई। एंड इन 1947 President Harry S. Truman delivered the first televised White House address as he spoke to the world.
1944 में आज ही के दिन फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार मिला। और 1962 की अगर बात करें तो आज ही के दिन जेम्स बॉन्ड सीरीज की पहली फिल्म डॉक्टर नो रिलीज हुई थी।
In the year 1989, Dalai Lama was honored with the Nobel Peace Prize. And in 1997, Dr. Kalpana Chawla became the first Indian woman to become an astronaut.
और 1989 की बात की जाए तो मीरा साहिब फातिमा बीबी देश की शीर्ष अदालत में पहली महिला न्यायाधीश बनी।
एंड इन द ईयर 1997 किरण बेदी इंडियाज फर्स्ट वुमन पुलिस ऑफिसर वाज अवार्डेड द जोसेफ ब्यूस प्राइज फॉर हर वर्क इन रिफॉर्मिंग द लार्जेस्ट प्रिजन ऑफ द कंट्री। एंड इन द ईयर 2015 द यूएस, जापान एंड 10 अदर नेशंस इन एशिया एंड द अमेरिकास रीच अग्रीमेंट ऑन द लैंड।
और इतिहास के बाद अब कुछ जानी मानी हस्तियों को याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गोंडवाना की शासक, जो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती हैं, रानी दुर्गावती की। दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज संभाला उसकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने की। आईना अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी।
Queen regent her own, time of ruling after King Dalpacha died in 1550 when his successor Crown Prince Veer Narayan was merely 5 years old. His wife, that is Queen Durgavati, rose to take the reins of the Gondwana kingdom as regent during the new king's minority. Diwan Adhar Kayasth and the minister Man Thakur helped the queen in looking after the administration successfully and effectively. Queen Durgavati promoted peace, trade and goodwill throughout her realm. Rani Durgavati moved her capital from Chingorgarh Fort to Chauragarh Fort. It was a fort of strategic importance situated at Satpura Hill Range. After the death of Sher Shah Suri, Shuja Khan captured Malwa and was succeeded by his son Baz Bahadur in 1556. After ascending to the throne, Baz invaded Rani Durgavati's Gondwana, but the invasion was repulsed with heavy losses for the former, earning the latter a lot of prestige. And today is the death anniversary of Steve Paul Jobs. Born in 1955, he passed away on this day in 2011. The American businessman, inventor, investor, best known for co-founding the technology company Apple. Jobs was also the founder of Next and chairman and majority shareholder of Pixar. He was a pioneer of the personal computer revolution in the 1970s and 80s. Along with his early business partner and fellow Apple co-founder, Steve Wozniak, in 1985, he and Wozniak co-founded Apple in 1976 to further develop and sell Wozniak's Apple I personal computer. Together, the duo gained fame and wealth a year later with production and sale of their same brand, one of the first highly successful mass-produced microcomputers. In 1985, Jobs departed Apple after a long power struggle with the company's board. And in 1986, he helped develop the visual effects industry by funding the computer graphics division of Lucasfilm that eventually spun off independently as Pixar, which produced the first 3D computer animated feature film Toy Story. I'm playing a snippet of a song from the same film.
You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
और श्रोताओं, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद धमार शैली के प्रसिद्ध गायक पंडित रामचतुर मलिक का। इन्होंने ध्रुपद धमार गायन शैली में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की और देश का नाम रोशन किया। चतुर मलिक ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और मैथिली लोकगीतों के अनुपम गायक थे।
कैसे लगा कंधैया मोरार, कंधैया मोरार, कंधैया मोरार, लगाए मासन प्रिय कन्हैया मोरा।
And today is the birthday of the Indian actor who is known for his work in several Indian independent and mainstream film production as well as international cinema. In films such as Reluctant, Fundamentalist, Life of Pi, both released in 2012, he received National Film Awards, also special jury. In 2017, National Film Awards for Hotel Salvation and Majrati Ketiki. We are talking about Khandkar Muhammad Adil Hussain. He has starred in English, Hindi, Assamese, Bengali, Tamil, Marathi, Malayalam, Norwegian and French films. As an actor, he first received acclaim in Othello, a play in black and white, which came out in 1999. which was awarded the Edinburgh Fringe first, and later Goodbye Desdemona, also directed by Royston Abel. He remained the artistic director and trainer of the Society for Artists and Performers in Hampi from 2004 to 2007 and visiting faculty at Royal Conservatory of Performing Arts, The Hague. He's also a visiting faculty at his alma mater, the National School of Drama. In the year 2004, he made his Bengali film debut along with Soha Ali Khan in the period drama Iti Srikanta, where he played the lead role. On television, he's appeared in the lead role with the detective series Jasoos Vijay, which came out between 2002 and 2003, produced by BBC World Service Trust. Though he has appeared in few Assamese films, he did a small role in Vishal Bharadwaj's Kamine, Sona Jain for Real. It was his role in Abhishek Chaubey's Ishkia, came out in 2010, that got him the attention in Bollywood. Though his first major role was in Saif Ali Khan Kaneera Kapoor starrer, Agent Vinod, released in early 2012. In the same year, he appeared in the Italian director Italo Spinelli's Gangor, Mira Nair's Reluctant Fundamentalist, and Ang Lee's Life of Pi. He next appeared alongside Sridevi in the comedy drama English Winglish, released in 2012, and also received critical acclaim for his role in Lessons in Forgetting at the New Jersey Independent South Asian Cinefest. After these, he acted in Aditya Bhattacharya's Bombay Most Wanted and Partho Sen Gupta's Sunrise. I'm playing a snippet of a song from the movie English Winglish.
New York mein lambi lambi buildings hoti hai na?
Shashi, wo Manhattan hai.
Men? Head? Done.
Man, as me.
Manhattan, Manhattan.
Manhattan, Manhattan.
Was also seen as a comeback movie for Sridevi.
जी अनिता, और अब हम भारतीय अभिनेता, हास्य कलाकार, चरित्र अभिनेता, संपादक या यूं कहें राजनीतिक व्यंग्यकार की बात कर रहे हैं, चोर रामस्वामी की। उनका पूरा नाम श्रीनिवास अय्यर रामस्वामी था। बाबूराव पटेल की मदर इंडिया की तर्ज पर चोर रामस्वामी ने तमिल में राजनीतिक व्यंग्य की पहली पत्रिका शुरू की थी और इसका नाम तुगलक रखा था।
Today is also the birthday of the Indian cinematographer, filmmaker, producer and writer S. Ravi Varman. Predominantly, he's worked in Tamil, Malayalam and Hindi film industries. Ravi Varman began his career in Malayalam films. He directed a romantic film in Tamil titled Moskovin Kaveri, honorary member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, AMPAS. In 70th National Awards, he won for Best Cinematography in Ponniyin Selvan. He's also of the many awards and honors that he's got. Filmfare Award for Best Cinemat South for Anyan in 2006. ITFA Best Cinemat Award for Dasavatharam. Star Guild Award for Best Cinematography for Barfi. And Screen Award for Best Cinemat for Barfi again. IFA Award for Best Cinemat for Barfi. I'm playing a snippet of a song from the movie Goliyon Ki Ras Leela, Ram Leela, for which he won a Best Cinemat Award again in 2014.
और आज हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार भगवती चरण वर्मा की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य किया। कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा के रेडियो रूपक महाकाल, कर्ण और द्रौपदी, जो 1956 ईस्वी में त्रिपथगा के नाम से एक संकलन के आकार में प्रकाशित हुए, उनकी विशिष्ट कृतियां हैं। यद्यपि उनकी प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी का आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में अपना महत्व है। इसके अलावा आज हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक दुर्गा प्रसाद खत्री की भी पुण्यतिथि है। ये ख्याति प्राप्त देवकी नंदन खत्री के पुत्र थे, जिन्हें भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में तिलस्मी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। दुर्गा प्रसाद खत्री ने 1500 कहानियां, 31 उपन्यास और हास्य प्रधान लेख लिखे। रचनाएं प्रतिशोध, लाल पंजा, रक्तमंडल, सुफेद शैतान, स्वर्ण रेखा, स्वर्गपुरी काफी उनकी लोकप्रिय रहीं।
And lastly, today is also the birthday of Kate Elizabeth Winslet, born on this day 1975, the English actress known for her roles as headstrong and complicated woman in independent films, particularly period dramas. She has received numerous accolades, including an Academy Award, a Grammy Award, 2 Primetime Emmy Awards, 5 BAFTA and 5 Golden Globe Awards. Time magazine named Winslet as one of the 100 most influential people in the world in 2009 and 21. I'm playing a snippet of a song from Titanic, My Heart Will Go On by Celine Dion.
Far across the distance and spaces.
और अब अनुमति दीजिए अनीता और फरहत को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day.
Namaskar.